मेरे प्यारे नौजवान साथियों नमस्कार। दोस्तों आज के मुख्य विषय के तहत मैं थोड़ा सा अलग से हटकर एक विषय को लेकर बात करना चाह रहा हूं और वह विषय है कि अभी अभी मुख्य परीक्षा जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की हुई थी उसके रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं और डिक्लेयर होने के बाद जानते हैं आपकी ज्यादातर लोगों को असफलता ही मिलती है, तो इसी विषय पर मैं बात करना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो एक वर्चुअल बातचीत हुई हमारे प्रधानमंत्री जी के और वहां के हेड के बीच में, वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट तो उसमें कोई ऐसा इवेंट नहीं आया है कि हम उसे बहुत ज्यादा तरजीह दे सकें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एक बात जरूर है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के संबंध धीरे धीरे बहुत बेहतर होते चले जा रहे हैं। क्वाड सबसे बड़ा जो अभी संगठन है जिसकी अक्सर आप चर्चा कर रहे होंगे वो है क्वाड। आप देखिए कि कैसे बकायदे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तक ने यह बात कही कि भारत को देख लो, रूस पर अमेरिका ने यूरोप के देशों ने इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं, इसके बावजूद भारत रूस से तेल खरीद रहा है और मजेदार बात है कि क्वाड का सदस्य भी बना हुआ है, अमेरिका भी क्वाड का सदस्य है, तो उन्होंने ये बात कही। तो क्वाड अभी बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है और ऑस्ट्रेलिया उसका सदस्य है। इसका मतलब यह हुआ कि खासकर जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, जो मैं बार बार आपको बताता भी रहता हूं और यह महत्वपूर्ण तथ्य भी है फिलहाल, तो उसे चीन के प्रभाव से मुक्त करने के लिए, या ये कह लीजिए कि उस चीन जो प्रभाव लगातार बढ़ाता चला जा रहा है उस बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा साझेदार भारत के साथ है। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ये क्वाड के सदस्य हैं और उस दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्र है। दूसरी बात, आपको यह भी कहीं कहीं पढ़ने को मिल सकती है शायद कि हमारे यहां से जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं उनमें बहुत बड़ी संख्या ऑस्ट्रेलिया जाने वालों की भी है, ये तथ्य भी आप ध्यान में रखिएगा। अमेरिका तो ही है, यूरोपीय देशों में जाते ही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी अब बहुत से स्टूडेंट जाने लगे। आप देखिए कि हमें पता नहीं चलता है यूक्रेन में, आप इमेजिन करेंगे कि हमारे इतने स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे हमारे यहां के, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का भी जो स्थान है वो इसमें काफी ऊपर है। तो दोस्तों केवल बस इतना ही ध्यान रखना आपके लिए फिलहाल पर्याप्त होगा और मैं अब सीधे मुख्य विषय पर आता हूं। मुख्य परीक्षा के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि जितने पद के लिए विज्ञापन निकलता है, जैसे अगर मोटे तौर पर हम 1000 पद मान करके चलें, तो उससे लगभग 12-13 गुना जो स्टूडेंट हैं या कैंडिडेट हैं कहना चाहिए यहां, मुख्य परीक्षा के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं। अगर 1000 पद हैं तो आप यूं कह लीजिए कि 12-13 हजार कैंडिडेट मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, ये बैठेंगे और जो टोटल विज्ञापित पद होते हैं उससे 2.5-3 गुना के बीच में कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए इनवाइट किए जाते हैं, 2.5 से 3 गुना। तो 1000 पद हैं तो हम मान करके चले कि 2500 से 3000 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। चलिए हम कह लेते हैं 3000 बुलाए जाएंगे और 13000 बैठे थे, इसका मतलब यह हुआ कि 10000 स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो सेलेक्ट नहीं होने वालों की संख्या जो है सेलेक्ट होने वालों की तुलना में 3 गुना से भी ज्यादा होती है, राइट? जब मुख्य परीक्षा में स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है तो देखिए निराश होना स्वाभाविक है। जब हम प्री में सेलेक्ट हो जाते हैं तो 2 संकट हमारे सामने उपस्थित होते हैं। जो पहला संकट होता है वह हमारे आसपास के लोगों का होता है, आसपास के लोगों का इस मायने में कि उनकी उम्मीदें हमसे बहुत ज्यादा होने लगती हैं कि अरे इसने तो प्री क्वालिफाई कर लिया तो अब तो ये बन ही जाएगा, इस तरह की बातें होने लगती हैं। जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के टफनेस को नहीं समझते हैं वो इस तरह की बातें करने लगते हैं, उनकी आंखों में चमक आ जाती है, हमारे परिवार के सदस्यों के मन में एक बहुत बड़ी आशा का भाव पैदा हो जाता है, ये पहली घटना होती है। और दूसरी घटना होती है कि हमारे दिमाग पर तनाव कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है उसके दिमाग पर जो एग्जाम दे रहा है, क्योंकि लोगों की आशाएं उससे जुड़ गई हैं और खुद की संवेदनशीलता भी बढ़ गई है कि यार प्री तो क्वालिफाई कर लिया, एक चैलेंज तो हमने पार कर लिया, अब ये जो दूसरा चैलेंज है, और सच पूछिए तो ये जो दूसरा चैलेंज होता है यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। दोस्तों कुछ लोगों को तो बाहर होना ही है, हमेशा ही होते रहेंगे। यहां आप क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जो लोग बाहर होने हैं उनमें आप न हो, बस इतने ही कर सकते हैं। तो आप न हो इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए सिर्फ उपाय एक ही है जो मैं लगातार आप लोगों से बार बार कहता रहता हूं, और वो ये है कि रियल में जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है दोस्तों, वो मेंस की ही प्रिपरेशन होती है। प्री नाम की कोई प्रिपरेशन होती ही नहीं। प्री के लिए आप बस थोड़ा सा अतिरिक्त समय देकर के अभ्यास कर लेते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी इस बात पर यकीन करने वालों का प्रतिशत मुश्किल से 1-2 होगा। उसका कारण है, कारण यह है कि आप जब YouTube खोलेंगे और उसमें सिविल सर्विस की तैयारी कराने वालों को ढूंढेंगे तो ऐसे बहुत से मिलेंगे जो आपको प्री की तैयारी करा रहे हैं, प्री की तैयारी करा रहे हैं। और मजेदार बात है कि 3-3 सप्ताह और 1-1 महीने में तैयारी करा देने का दावा करते हैं। और चूंकि हम सब जो तैयारी करने वाले लोग हैं, सरल रास्ता चाहते हैं, आसान रास्ता चाहते हैं, और इससे सरल और आसान रास्ता क्या हो सकता है, तो हमें यह सूट करता है और हम उन्हीं बातों पर यकीन करने लगते हैं जो हमें सूट करता है। मेरी इस लाइन पर आप गौर कीजिएगा, हम उन बातों पर यकीन नहीं करना चाहते जो हमें पसंद नहीं है लेकिन जरूरी है। हम उन पर यकीन नहीं करना चाहते, हम यकीन उन पर करना चाहते हैं जो हमें पसंद हैं और हमें आसान मालूम पड़ते हैं। तो दोस्तों, शॉर्टकट से कभी भी आप राजमार्ग की यात्रा नहीं कर सकते, और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो एक प्रकार से राजमार्ग की यात्रा है, या शॉर्टकट के लिए गुंजाइश नहीं है, और ऐसा ही ज्यादा हो रहा है। मेरे पास बहुत ही तरह के मेल आते हैं स्टूडेंट्स के, जैसे अभी कल ही परसों एक मेल आया कि सर आप इतने सारे क्लिपिंग्स डाल देते हैं, उन्हें देख करके हमें डर लगने लगता है, हम कंफ्यूज्ड भी हो जाते हैं, जरा प्लीज इसे कम कीजिए, इतना ज्यादा मत डालिए, आप तो खुद ही कहते हैं कि कम से कम पढ़ना चाहिए। तो भैया, अगर मैं कहता हूं कि कम से कम पढ़ना चाहिए तो कितना कम से कम, क्या बिल्कुल नहीं? मैं जितने भी क्लिपिंग्स डालता हूं बहुत सोच समझ करके डालता हूं, पढ़ करके डालता हूं, आपके लिए वो जरूरी होते हैं तभी डालता हूं। आप देखें कि आपके लिए क्या जरूरी है उसमें से, अगर जो आप जानते हैं जिसके बारे में पढ़ चुके हैं उसे मत पढ़िए। तो इससे रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट यह हो रहा है कि स्टूडेंट को अभी भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो गंभीरता है ज्यादातर स्टूडेंट्स को, उसका आभास नहीं है। सोचते हैं कि प्री एग्जाम की प्रिपरेशन कर लें, इसके बाद जब मेंस का होगा तो देखा जाएगा, और फिर जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है और उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं फिर मेंस की तैयारी करना शुरू करते हैं। और दोस्तों, पता नहीं आप मेरी बातों पर विश्वास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ज्यादातर जो असफल होने वालों की संख्या है वो ऐसे ही स्टूडेंट की संख्या होती है। और ये वे स्टूडेंट होते हैं जो कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप मेरी बात को थोड़ी सी एक कड़वी बात कह सकते हैं, लेकिन कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो भी असफल हुए हैं जो मेंस की तैयारी अच्छी तरीके से करके बैठे थे, वो भी असफल हुए हैं। लेकिन उनके साथ एक पॉजिटिव बात यह है कि वो इस बार असफल हुए हैं ना, तो कोई बात नहीं, वो अगली बार निश्चित रूप से सफल होंगे। अगर अगली बार नहीं होंगे तो अगली बार से अगली बार सफल हो जाएंगे, उन्हें सफलता मिलेगी, क्योंकि वो इसके तरीके को जान रहे हैं, इसके पैटर्न को समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, कॉम्पिटिशन तो होता ही ऐसा है कि बहुत अच्छी अच्छी टीमें पराजित हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अब अगले बार भी वो हारेंगी ही हारेंगी। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो डिमांड्स हैं, इसकी जो गंभीरताएं हैं, प्लीज आप उन्हें समझने की कोशिश करें, इसे हल्के फुल्के तरीके पर मत लें, बिल्कुल हल्के फुल्के तरीके से। ज्यादातर मेल्स में देखता हूं कि हल्के फुल्के तरीके वाले आते हैं, हमें ये पसंद नहीं है। अरे भाई, पसंद नहीं है तो अब क्या किया जाए? अब यूपीएससी को लिखिए, पसंद नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं? शायद यूपीएससी आपकी सुन ले। मेरे पास समय नहीं है, मैं क्या करूं? लेकिन आईएएस बनने का सपना देखता हूं तो मैं कहां से समय ला करके दे दूं, मैं क्या करूं? बताइए, कुछ उपाय हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अपने इस डेली ऑडियो लेक्चर में उन तक पहुंचा दूंगा जो इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। मैं कोचिंग करना चाहता हूं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो बताइए मैं क्या करूं? क्या उपाय हो सकता है इन सब चीजों का? देखिए, सच बात यह है कि ये सारी जो बातें होती हैं दोस्तों, फिर से मैं एक कड़वी बात कहने जा रहा हूं, जो सारी बातें होती हैं इस तरह से, ये आपकी प्रतिबद्धता की कमजोरी को शो करती हैं कि आप में कमिटमेंट नहीं है। क्योंकि जिनमें कमिटमेंट होता है ना, वो फिर उसको पाने के लिए, उसको करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। फिर वो अपनी समस्याएं नहीं बताते कि ये समस्या है, ये और समस्याएं अगर हैं तो उनसे वो खुद जूझते हैं, उनके रास्ते निकालते हैं। और मैं समझता हूं कि जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हो चुका है उसमें इतनी क्षमता तो होनी चाहिए कि वो अपनी समस्याओं को आइडेंटिफाई कर सके और उन समस्याओं के समाधान भी ढूंढ सके। ऐसी क्या बात है, आजकल सब चीजें अवेलेबल हैं। हम लोगों के दौर में अगर आप चाहते भी तो चीजें अवेलेबल नहीं थी, आज सारी चीजें अवेलेबल हैं। बस आपको अपने चयन को बहुत पुख्ता बनाना होगा, विश्वसनीय बनाना होगा, क्योंकि आप जो निर्णय लेंगे कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, किसके माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, वही इस बात का फैसला करेगा कि आपका सिलेक्शन कितना प्रतिशत संभावित है। इसलिए दोस्तों, चलिए, जो भी स्टूडेंट असफल हुए हैं, कुछ को असफल होना ही है, संयोगवश या दुर्भाग्यवश कह लीजिए कि उसमें आप शामिल हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बड़े कामों के साथ ऐसा होता ही होता है और आपने एक बड़ा काम करने का फैसला किया है, इसलिए निराशा स्वाभाविक है। अभी आप निराश हैं, कोई बात नहीं, ज्यादा देर तक निराश मत रहिए। जिस पैटर्न से प्रिपरेशन की जानी चाहिए उस पैटर्न को समझिए, लोगों से मिलिए, बातचीत कीजिए और फिर तैयारी शुरू कर दीजिए। ये मत समझिए कि इस बार आप असफल हो गए हैं तो असफलता ही आपके भाग्य में दर्ज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी तैयारी का विश्लेषण कीजिए बहुत ही तटस्थता के साथ, बहुत ही निर्ममता के साथ उस पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद बकायदे पॉइंट्स नोट कीजिए कि अब जो आप प्रिपरेशन करेंगे उसमें किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और किन किन बातों को बिल्कुल छोड़ देना है। अगली बार आप मुस्कुराने वाले चेहरों में शामिल होंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, लेकिन प्लीज अगर आप असफल हो गए हैं तो भाग्य को दोष मत दीजिए, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को दोष मत दीजिए, किसी यूपीएससी को दोष मत दीजिए, किसी एग्जामिनर को दोष मत दीजिए, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अपनी कमियों को पकड़ने जानने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर झांकिए, आपको चीजें कमियां दिखाई देंगी और डेफिनेटली वही प्रयास आपको अंततः सिविल सर्वेंट बना सकेगा। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। हम लोगों की अभी जो ऑफलाइन क्लासेस 27 मार्च से दोस्तों होने वाली हैं, उसके लिए दो स्टूडेंट ने एडमिशन लिए हैं। इनके नाम है कांता जाट, इनका गांव है सुल्तानपुर, जिला भिलवाड़ा राजस्थान, और नंदी रावल, आप अहमदाबाद गुजरात से हैं। तो कांता और नंदी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने अपने नए बैच के डेट की भी घोषणा कर दी है, जो 7 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं और अभी रजिस्ट्रेशन कराने वालों को बकायदे ₹2000 के डिस्काउंट की भी घोषणा की गई है। और मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पहले ही दिन इसमें एक रजिस्ट्रेशन हुआ है और इसका श्रेय जाता है मोहित मिश्रा फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश को, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट बैच होगा उसके जो पहले एनरोल्ड स्टूडेंट हैं वे हैं मोहित मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की आप सबसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।